ध्वनि नियम। भाषा की परिवर्तनशीलता के क्रम में हमने देखा है कि भाषा में परिवर्तन का चक्र सदा चलता रहता है और उससे भाषा का कोई भी अंग, ध्वनि, पद, वाक्य या अर्थ अप्रभावित नहीं रहता। कहने की आवश्यकता नहीं कि परिवर्तन का आरंभ मुख्यतः ध्वनियों से ही होता है। पहला, एक बार ध्वनि संबंधी परिवर्तन आरंभ हो जाने पर न तो वह रुकता है और न पीछे की ओर मुड़ता है, बल्कि संबद्ध ध्वनि समूह को प्रभावित करते हुए दिशा विशेष में अग्रसर होता जाता है। उदाहरण के रूप में जर्मनिक भाषाओं का ध्वनि परिवर्तन ले सकते हैं, जिसकी चर्चा आगे होगी। दूसरा, ध्वन्यात्मक परिवर्तन बहुत कुछ नियमित होता है। इसी अनियमितता के आधार पर ध्वनि विज्ञान या भाषा विज्ञान की श्रेणी में आता है। यद्यपि यह भी ठीक है कि ध्वनि विज्ञान के नियम भौतिक विज्ञान आदि के नियमों के समान व्यापक और सुनिश्चित नहीं होते, फिर भी उनकी व्यापकता उपेक्षणीय नहीं है। तीसरा, ध्वन्यात्मक नियम मुख्यतः अतीत काल से संबद्ध होता है, अतः उसके संबंध में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भौतिक विज्ञान या रसायन के नियम भविष्य के लिए भी सही है। उदाहरणार्थ, अनुपात विशेष में कुछ तत्वों के मिश्रण से यदि कोई वस्तु पहले उत्पन्न हुई है या आज उत्पन्न होती है, तो उसी अनुपात में उसके मिश्रण से वह वस्तु आगे भी उत्पन्न होगी। ऐसी बात भाषा विज्ञान के संबंध में नहीं की जा सकती, क्योंकि भाषा का संबंध जड़ वस्तुओं से नहीं है। भाषा चेतना संपन्न मनुष्य से संबद्ध है, जो परिस्थितियों से स्वयं प्रभावित और परिवर्तित हुआ करता है। उस प्रभाव और परिवर्तन से भाषा भी नहीं बच पाती मनुष्य की, और परिणामतः भाषा की परिवर्तनशीलता के कारण उसके नियमों को अपरिवर्तनीय एवं निश्चित बंधनों में बांधना संभव नहीं होता। चौथा, किसी ध्वनि संबंधी परिवर्तन का आरंभ पहले तो प्रवृत्ति के रूप में होता है, किंतु वही जब व्यापक और स्थायी बन जाता है तब नियम का रूप धारण कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह कि काल विशेष की प्रवृत्ति ही कालांतर में नियम बन जाती है। उदाहरणार्थ, मूल भारत यूरोपीय भाषा का स ईरानी में ह हो गया। आरंभ में स का ह के रूप में उच्चारण करने की प्रवृत्ति रही होगी, वही बाद में स्थिर हो गई। इसी प्रकार जर्मन की दंत ध्वनियां अंग्रेजी में मूर्धन्य बन गई। पांचवा, ध्वनि परिवर्तन की गति बड़ी मंद और अलक्ष्य होती है। भाषा के स्थिरता और बोधगम्यता के दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है, अन्यथा एक ही पीढ़ी की भाषा इतनी परिवर्तित हो जाती कि वृद्धि की बात बच्चा नहीं समझ पाता। उपाध्याय से झा या चतुर्वेदी से चौबे होने में शताब्दियां लगी होंगी। छठा, ध्वनि परिवर्तन अन्य ध्वनि सापेक्ष होता है, अर्थात आसपास की ध्वनियों से नियंत्रित होता है। सर्वथा निरपेक्ष ध्वनि परिवर्तन अकल्पनीय है। कहीं स्थान का, कहीं करण का, कहीं प्रयत्न का, कहीं बल का, कहीं स्वर का, कहीं भाषा प्रवाह का असर उस पर पड़ता है। काम या राम का उच्चारण काम या राम जैसा होता है। का या रा स्वयं अनुनासिक नहीं है, किंतु म की अनुनासिकता से प्रभावित होकर उसमें भी अनुनासिकता आ जाती है। इस प्रकार ध्वनियों की स्थिति, ध्वनियों का रूप, निकटस्थ ध्वनियों में उसका सारूप्य आदि सारी बातें ध्वनि परिवर्तन के प्रसंग में देखनी होती हैं। जैसा ऊपर कहा गया है, ध्वनि परिवर्तन सदा एक दिशा में ही नहीं होता। उदाहरणार्थ, श्रमशु और अश्रु के श्रु का परिवर्तन एक ही रूप में दिखाई नहीं देता। श्रमशु के श्रु का छ मूछ हो गया, किंतु अश्रु के श्रु का सु आंसू हो गया। कर्म यानी काम हुआ, पर धर्म या मर्म से धाम या माम नहीं हुआ। सातवां, ध्वनि नियम का संबंध काल विशेष और स्थान विशेष से होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ध्वनि नियम सार्वदेशिक और सार्वकालिक नहीं होता। किसी भाषा से संबद्ध नियम उसी भाषा के किसी काल विशेष पर लागू होता है और उसमें भी उस भाषा के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू हो यह आवश्यक नहीं। संभव है उस भाषा क्षेत्र के किसी एक भाग में ही लागू हो। ध्वनि नियम के अपवाद। ध्वनि नियम के दो मुख्य अपवाद हैं। पहला, दूसरी भाषा से गृहित शब्दों पर किसी भाषा के ध्वनि नियम लागू नहीं होते। यदि होते हैं तो भी जब वे शब्द उस ध्वनि नियम के प्रचलित होने के पहले गृहीत हुए हों। उदाहरणार्थ आधुनिक युग में लातिन या ग्रीक से जो शब्द जर्मन में लिए गए हैं उन पर ग्रिम नियम लागू नहीं होता। हिंदी में ही जो शब्द तत्सम रूप में चले आ रहे हैं उन पर प्राकृत या अपभ्रंश के ध्वनि नियम नहीं घटित किए जा सकते। उदाहरणार्थ तत्सम क्षेत्र शब्द ध्वनि परिवर्तन के उन नियमों से अप्रभावित है जिनसे वह खेत बना। दूसरा, ध्वनि नियम का दूसरा विरोधी कारण है सादृश्य। सादृश्य के कारण भाषा में परिवर्तन होता है। इस पर भाषा के परिवर्तनशीलता और इसके कारणों की चर्चा के प्रसंग में विचार किया जा चुका है। सादृश्य का आधार मुख्यतः बाह्य होता है। स्वभावतः भाषा की अंतर्निहित और नैसर्गिक विशेषताओं से उसका संबंध नहीं होता। शुड और वुड के सादृश्य पर कुड में भी एक का प्रयोग होने लगा, यद्यपि कैन में उसका अभाव है। शैल और विल के एक का प्रभाव शुड और वुड में तर्कसंगत है, पर कुड का एक तो सर्वथा सादृश्य प्रसूत है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि ऐसे आधारों पर कोई नियम बनाने का प्रयास किया जाए तो वह भ्रांत और अग्राह्य होगा। ग्रिम नियम। ध्वनि नियम का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है ग्रिम नियम। यद्यपि ध्वनि परिवर्तन संबंधी नियमों का संबंध ग्रिम से जोड़ा जाता है, किंतु उसका सूत्र रास्क और ईरे ने पहले ही ढूंढ निकाला था। उसे व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय याकोब ग्रिम सन 1785 से 1863 ईस्वी नामक जर्मन विद्वान को है। इसी से यह नियम उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, गॉथिक, जर्मन आदि भारत यूरोपीय परिवार की भाषाओं के तुलना के प्रसंग में ग्रिम ने देखा कि मूल भारत यूरोपीय भाषा की कुछ ध्वनियाँ जर्मनिक शाखा से दूसरे ही रूपों में प्रयुक्त मिलती हैं। सूक्ष्मता से विचार करने पर ग्रिम को उन ध्वनि परिवर्तनों में व्यापकता दिखी और उन्होंने उन्हें नियमबद्ध करने का प्रयास किया। उनके द्वारा निर्धारित नियमों का संबंध दो ध्वनि परिवर्तनों से है। एक तो प्रथम ध्वनि परिवर्तन जो प्रागैतिहासिक काल में कभी हुआ, संभवतः छठी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच, और फिर द्वितीय ध्वनि परिवर्तन जो सातवीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ। इन दोनों ध्वनि परिवर्तनों का संबंध जर्मनिक शाखा की भाषाओं से है। इस संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखने की है। पहला, ग्रिम की मान्यता है कि मूल भारत यूरोपीय परिवार भाषा की ध्वनियाँ संस्कृत, ग्रीक और लातिन में सुरक्षित हैं। व्यंजन संस्कृत में सबसे अधिक सुरक्षित हैं। दूसरा, ध्वनि संबंधी परिवर्तन केवल जर्मनिक भाषा की शाखा के भाषाओं में हुआ है, इसलिए ग्रिम नियम केवल जर्मनी शाखा पर घटित होता है। तीसरा, जैसा अभी कहा गया है वह ध्वनि परिवर्तन दो बार हुआ। क, एक बार प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल इसलिए कहते हैं कि निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि वह ध्वनि परिवर्तन कब हुआ। अनुमान है कि छठी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच कभी हुआ होगा, किंतु यह अनुमान ही है। ख, दूसरा ध्वनि परिवर्तन सातवीं शताब्दी ईस्वी के लगभग हुआ, जब उच्च जर्मन, आज की जर्मन, और निम्न जर्मन, अंग्रेजी आदि पृथक हुई। यहाँ उच्च और निम्न शब्द का प्रयोग भौगोलिक दृष्टि से है। जर्मनी का दक्षिणी भाग ऊंचा पड़ता है और वहाँ बोली जाने वाली भाषा को उच्च जर्मन कहते हैं। उत्तर के समतल अथवा अपेक्षाकृत निम्न भाग में बोली जाने वाली भाषा निम्न जर्मन कहलाती है। उच्च और निम्न शब्दों का प्रयोग जर्मन भाषा की किसी विशेषता या हीनता से संबंध नहीं है, बल्कि शुद्ध भौगोलिक दृष्टि से है। इसे याद रखना चाहिए। निम्न जर्मन की ही शाखाएं अंग्रेजी, डच, डेनी, नॉर्वेई, स्वीडी आदि हैं, जैसा भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण में दिखाया जा चुका है। प्रथम ध्वनि परिवर्तन। ग्रिम नियम के अनुसार प्रथम ध्वनि परिवर्तन निम्नलिखित रूप में हुआ। मूल भारत यूरोपीय जर्मनी, क, त, प, अघोष अल्पप्राण, का, ख, यानी ह, थ, प, अघोष महाप्राण जर्मनिक में, घ, ध, भ, घोष महाप्राण जर्मनिक में। भारत यूरोपीय परिवार में घ, ध, भ, घोष महाप्राण, का, ग, द, ब, घोष अल्पप्राण में जर्मनिक में परिवर्तन हुआ। घ, द, ब, घोष अल्प प्राण का, क, त, प, यानी अघोष अल्पप्राण में जर्मनिक में हुआ। इसको निम्नलिखित रेखाचित्र की सहायता से और स्पष्ट किया जा सकता है। यूरोपीय विद्वानों ने ग्रिम नियम को स्पष्ट करने के क्रम में ग्रीक, लैटिन, गॉथिक आदि भाषाओं के उदाहरण दिए हैं, जिनका परिचय भारतीय पाठकों को प्रायः नहीं रहता। इस कारण यह नियम जितना कठिन नहीं है उतना कठिन बन जाता है। हमने उन भाषाओं के उदाहरण छोड़ दिए हैं। मूल भारत यूरोपीय की प्रतिनिधि के रूप में संस्कृत को रखा है और जर्मनिक शाखा की प्रतिनिधि के रूप में अंग्रेजी को। ये दोनों ही भाषाएं भारतीय पाठकों के लिए परिचित और ज्ञात हैं। अतः भाषाओं के उदाहरण की सहायता से ग्रिम नियम को समझने की सुविधा और सरलता होगी। भारत यूरोपीय, जर्मनिक, संस्कृत और अंग्रेजी। क से ख या ह, संस्कृत में क, अंग्रेजी में हु, कद और अंग्रेजी में वाट। त से थ, संस्कृत में त्री, अंग्रेजी में थ्री, संस्कृत में तनु, अंग्रेजी में थिन। प से फ, संस्कृत में पद, अंग्रेजी में फुट, संस्कृत में पत्र, अंग्रेजी में फेदर। घ या ह से ग, संस्कृत में हंस, अंग्रेजी में घुस। ध से द, संस्कृत में विधवा, अंग्रेजी में विडो, संस्कृत में बंद, अंग्रेजी में बैंड। भ से ब, संस्कृत में भ्रातृ, अंग्रेजी में ब्रदर, संस्कृत में भ्रू, अंग्रेजी में ब्राउ। ग से क, संस्कृत में गौ, अंग्रेजी में काउ, संस्कृत में युग, अंग्रेजी में योग। द से त, संस्कृत में द्वौ, अंग्रेजी में टू, संस्कृत में स्वेत, इंग्लिश में श्वेत। ब से प, तुरबा, संस्कृत में इंग्लिश में थोर। ब से प के ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण संस्कृत में नहीं मिलता। द्वितीय ध्वनि परिवर्तन। प्रथम ध्वनि परिवर्तन का संबंध एक ओर भारत यूरोपीय परिवार की संस्कृत, ग्रीक, लैटिन भाषाओं और दूसरी ओर जर्मनिक भाषाओं के बीच था। ऊपर ये उदाहरण प्रथम ध्वनि परिवर्तन के हैं। जैसा कहा जा चुका है, द्वितीय ध्वनि परिवर्तन स्वयं जर्मनिक भाषाओं की ही दो शाखाओं में हुआ, जिन्हें उच्च जर्मन और निम्न जर्मन कहते थे। इस ध्वनि परिवर्तन में क्रमशः ग, द, ब, का, क, त, प, क, त, प, का, ख, थ, फ, ख, थ, फ, का, ग, द, ब हो जाता है। उदाहरणार्थ क से ख, अंग्रेजी में बुक, आधुनिक जर्मन में बुख। त से थ, इंग्लिश में वाटर, जर्मन में वासेर। प से फ, अंग्रेजी में स्प्रिंग, जर्मनिक में फ्यूलिंग। अंग्रेजी में स्लिप, जर्मन में श्लाइफेन। थ से द, अंग्रेजी में थ्री, जर्मन में द्री। अंग्रेजी में नॉर्थ, जर्मन में नॉर्देन। अपवाद। उपर्युक्त ध्वनि नियम आपातः बड़ा सीधा और सरल प्रतीत होता है, पर स्वयं ग्रिम को बहुत सारे अपवाद मिले जिनका समाधान इस नियम में नहीं हो सका। कुछ अपवाद ऐसे भी मिले जो अपने आप में पर्याप्त नियमित थे, जैसे क, त, प के पहले यदि स रहता है तो उपरिनिष्ठित दिष्ट ध्वनि परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह त के पहले क और प रहने पर भी त अपरिवर्तित रह जाता है। यदि त रहा तो थ और फिर रस हो जाता है। तात्पर्य कि स्क, स्त, स्प, उक्त, पत और त के संयोग में यह नियम लागू नहीं होता। जैसे भारत यूरोपीय परिवार में पिस्केस, जर्मनिक में फिश, ख होना चाहिए था। भारत यूरोपीय परिवार में अस्ति, जर्मनी में इस्त या थ होना चाहिए था। भारत यूरोपीय परिवार में स्पश, जर्मनी में स्पेहोन या फ होना चाहिए था। भारत यूरोपीय परिवार में नप्ता, जर्मनिक में निफ्त या थ होना चाहिए था। भारत यूरोपीय परिवार में वित्त, जर्मनिक में विस्सा या थ होना चाहिए था। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि क तौ प जब संयुक्त रूप में आते हैं तो उन पर उपर्युक्त ध्वनि नियम लागू नहीं होता। ग्रासमन नियम। ग्रिम ने स्वयं बहुत सारे पौधों का समाधान किया जैसा अभी ऊपर दिखाया गया है, फिर भी बहुसंख्यक अपवाद असमाहित रह गए। उदाहरणार्थ निम्नलिखित शब्दों को लीजिए। संस्कृत में बोधति, गोथिक में व्युदान, संस्कृत में दव, गोथिक में दौवस। ग्रिम नियम के अनुसार बोधति की ब और दव के द का गोथिक में क्रमशः प और त हो जाना चाहिए था, इसके विपरीत यहाँ ब और द मिलते हैं। ग्रामसन ने उनका कारण यह बताया कि भारत यूरोपीय में दो सन्निकृष्ट महाप्राण ध्वनियाँ साथ नहीं रहती, उनमें प्रथम अल्प प्राण हो जाती है। जैसे संस्कृत में धातु से दधात रूप होना चाहिए पर होता है दधात। दो महाप्राण ध्वनियाँ ध ध जब एक साथ आई तो प्रथम महाप्राण ध का अल्प प्राण द हो गया। इसी प्रकार ब्री धातु से विभर्ति के बदले विभर्ति रूप होता है, यहाँ भी पहले भ का भ हो गया। जहाँ ग्रिम नियम में अपवाद दिखाई पड़ता है वहाँ ऐसी ही स्थिति रहती है। दो महाप्राण ध्वनियों वाले स्थल पर एक अल्प प्राण हो जाती है और यह नियम जैसा संस्कृत ग्रीक आदि भाषाओं के लिए लागू है वैसा ही जर्मनिक के लिए भी। जहाँ अकेले ग त ब रहते हैं वहाँ उनका क त प हो जाता है। ग्रासमन के इस संशोधन से बहुत सारे अपवादों का निराकरण हो गया, किंतु फिर भी सभी अपवाद समाप्त नहीं हुए। ग्रासमन के नियम से समाहित न होने वाले अपवादों का समाधान कार्ल फोर्नर ने किया। फेर्नर नियम। ग्रिम नियम के अनुसार संस्कृत ग्रीक आदि के बहुत सारे शब्दों के विद्यमान क त प का जर्मनिक में ख थ फ हो जाना चाहिए पर वैसा न होकर ग द ब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? फेर्नर का समाधान है कि यदि क त प के पूर्ववर्ती स्वर पर बलाघात रहा तो ग्रिम नियम के अनुसार क त प का ख थ फ होता है, पर यदि बलाघात पूर्ववर्ती स्वर के बदले परवर्ती स्वर पर रहा तो क त प का ग द ब हो जाता है। जैसे संस्कृत में युवशस, गोथिक में युंग्स, यानी श का ग हो गया। संस्कृत में शतम, गोथिक में उंद, यानी त का द हो गया। संस्कृत में सप्तन, गोथिक में सिवन, यानी प का ब हो गया। यह प्रवृत्ति अंग्रेजी के भी अनेक शब्दों में पाई जाती है। ग्रिम नियम के अनुसार जैसे संस्कृत के त्री का अंग्रेजी में थ्री हो जाता है वैसे ही ते का थे, त्र का तत्र या थत्र होना चाहिए था किंतु इसके प्रतिकूल ते का दे और त्र का दीदर हो जाता है। ऐसा संभवतः बलाघात वाले आधार पर ही होता है जिसे फेर्नर ने प्रस्तुत किया। संक्षेप में ग्रिम नियम की और संशोधन के रूप में ग्रासमन और फेर्नर के नियमों की यही रूपरेखा है। मानस्वर की कल्पना लंदन विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान के प्रोफेसर डेनियल जोन्स ने की। मानस्वर आठ हैं जो किसी भाषा विशेष से संबंध न होकर काल्पनिक स्वर हैं। इनकी व्यावहारिक उपयोगिता यह है कि इनकी सहायता से किसी भाषा के स्वर ध्वनियों की उच्चारण प्रक्रिया का सम्यक और समुचित निर्धारण किया जा सकता है। मानस्वरों को अंग्रेजी में कॉर्डिनल वॉवल्स कहते हैं। मानस्वरों का विवरण इस प्रकार है। पहला अग्र संवृत ई, दूसरा अग्र अर्ध संवृत ए, तीसरा अग्र अर्ध विवृत ए, चौथा अग्र विवृत अ, पांचवा पश्च विवृत आ, छठा पश्च अर्ध विवृत ओ, सातवां पश्च अर्ध संवृत ओ, आठवां पश्च संवृत ओ। स्वनेम सिद्धांत। स्वनेम सिद्धांत आधुनिक भाषा वैज्ञानिक प्रविधि और पद्धति का अपरिहार्य अंग बन गया है। स्वनिम शब्द अंग्रेजी के फोनीम का नवीनतम हिंदी रूपांतर है। इसके लिए अब तक ध्वनिग्राम शब्द का प्रयोग होता रहा है, किंतु भारत सरकार के पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने फोनीम का हिंदी रूपांतर स्वनिम किया है, जो उच्चारण सौकर्य या ध्वनि साम्य की दृष्टि से ही नहीं सार्थकता की दृष्टि से भी ध्वनिग्राम की अपेक्षा अधिक ग्राह्य है। स्वनिम शब्द संस्कृत के स्वन धातु से निष्पन्न है जिसका अर्थ होता है ध्वनि या आवाज करना। ध्वनि के दो प्रमुख पक्ष हैं, पहला औपचारिक यानी आर्टिकुलेटरी और दूसरा ध्वनिक यानी अकाउस्टिक। मनुष्य के वाग्यंत्र से ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका अध्ययन औपचारिक ध्वनि विज्ञान का विषय है। किंतु ध्वनि की उपयोगिता उसके ग्रहण अर्थात श्रवण में है। जब तक कोई श्रोता न हो तो तब तक ध्वनि की अर्थात बोलने की कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए औपचारिक से कम महत्व ध्वनि या श्रावणिक श्रवण संबंधी ध्वनि विज्ञान का नहीं है। स्थान करण प्रयत्न की सहायता से ध्वनि की उत्पत्ति का विचार औपचारिक ध्वनि विज्ञान में होता है, किंतु ध्वनि का संवहन अथवा उसकी तारता तीव्रता आवृत्ति आदि का अध्ययन ध्वनि विज्ञान की सीमा में आता है। दूसरे शब्दों में यह कहें कि औपचारिक ध्वनि विज्ञान का आधार शरीर विज्ञान है तो ध्वनिक ध्वनि विज्ञान का भौतिक विज्ञान। ध्वनि के अध्ययन की यह नई दिशा भौतिक विज्ञान के विकास का परिणाम है। वस्तुतः ध्वनिक ध्वनि विज्ञान और भौतिक विज्ञान की ही एक शाखा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि ध्वनिक ध्वनि विज्ञान की उपलब्धियों से औपचारिक ध्वनि विज्ञान की परंपरागत एवं प्राचीन प्रणाली अधिक सूक्ष्म और वैज्ञानिक बनी है। मनुष्य के वाग यंत्र में अनंत ध्वनियों के उत्पादन की क्षमता विद्यमान है, किंतु वह सबका प्रयोग नहीं करता, क्योंकि किसी भी भाषा के मूलभूत ध्वनियों की संख्या 50 से अधिक नहीं पाई जाती। अधीत भाषाओं के आधार पर मूलभूत ध्वनियों की संख्या न्यूनतम 15 और अधिकतम 50 निर्धारित की गई है। अर्थात किसी भी भाषा की ध्वनियाँ 15 से 50 के बीच ही पाई जाती हैं। ध्वनि की इन मूलभूत ध्वनियों का विश्लेषण और निर्धारण स्वनि सिद्धांत का लक्ष्य है। स्वनिम की निश्चित और सर्वथा निर्दोष परिभाषा देना कठिन है। परिभाषा का आग्रह छोड़कर यदि शब्द को स्पष्ट करने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि स्वनिम उच्चरित भाषा का वह न्यूनतम अंश है जो दो ध्वनियों का अंतर प्रदर्शित करता है। क और ख या च और प में अंतर इसलिए है कि ये भिन्न स्वनिम है। गान और कान का अंतर स्वनिम के भेद के कारण ही प्रतीत होता है। यह अंतर अपेक्षाकृत स्थूल है, पर ध्यान देने पर ध्वनियों में इससे भी सूक्ष्म अंतर दिखाई देता है। उदाहरणार्थ इन शब्दों को लीजिए, कल काल कील कूल कोल। ध्वनि विज्ञान से अनभिज्ञ व्यक्ति के लिए इन पांचों शब्दों के क में कोई अंतर नहीं है, परंतु सच्चाई यह है कि पांचों क एक दूसरे से भिन्न है। आप स्वयं ध्यान से उच्चारण कीजिए तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा। काल के क का उच्चारण मुख के बिल्कुल पिछले भाग प्रायः कंठ के पास से होता है, तो कील या कूल के क का बहुत आगे से। का कू या का की साथ साथ कहने पर अंतर स्पष्ट हो जाता है। यह अंतर क में लगे हुए स्वर के कारण हो रहा है जो क के उच्चारण को प्रभावित और अपरिवर्तित कर देता है। स्थूल दृष्टि से भले ही इस अंतर की हम उपेक्षा कर दें, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से यह अनुपेक्षणीय है, कारण कि यंत्रों की सहायता से परीक्षा करने पर यह अंतर पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। प्रश्न है कि इन पांच क ध्वनियों की भिन्न माने या अभिन्न। वैज्ञानिक दृष्टि से इन्हें भिन्न मानना है उचित और तर्कसंगत है, परंतु भिन्न मानने पर किसी भी भाषा में अनंत ध्वनियां माननी होंगी। जैसा हम देख चुके हैं, इस भिन्नता का कारण है क के स्वरों की भिन्नता। इसके अतिरिक्त भिन्नता के दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जिनमें प्रमुख है पार्श्ववर्ती ध्वनियों का प्रभाव। काल और काल काम के क में अंतर है। काम का उच्चारण हमू होता है, यहाँ क पार्श्ववर्ती म से प्रभावित है। म की अनुनासिकता क में भी आ गई है। इसी प्रकार हम कान का उच्चारण कौन करते हैं। दिक्पाल और दिग्जाल के क में भी अंतर है। दिक्पाल में क का उच्चारण क ही होता है, किंतु दिग्जाल में ज के सान्निध्य से क का उच्चारण ग के रूप में होता है। इन भिन्नताओं या विषमताओं के बावजूद इन अनेक क ध्वनियों में समता है। क का की कु को आदि के उच्चारण में स्थान करण आदि का भेद होने पर भी उनमें क जो समान ध्वनि है वही उसे एक स्वनिम मानने का आधार प्रस्तुत करती है। कल काल कील कूल आदि में जो अंतर है वह एक प्रकार का है, किंतु कल और खल का अंतर दूसरे प्रकार का है। यहाँ प्रारंभ की दो ध्वनियों क और ख के अंतर के कारण अर्थ में अंतर आ जाता है। इसी तरह कल और गल में भी क और ग के कारण अर्थभेद हो जाता है। सरस चरस, परस बरस में केवल आरंभ में एक एक ध्वनि के कारण प्रत्येक शब्द का अर्थ बदल जाता है। सरस और चरस के अर्थ में भेद उपस्थित करने का श्रेय स और च ध्वनियों को है, जो दो भिन्न स्वनिम हैं। इसीलिए स्वनिम की परिभाषा में अंतर शब्द पर बल दिया गया है। तात्पर्य कि स्वनिम अर्थ भेद का साधक ध्वनि भेद है। जब तक अर्थ में भेद नहीं होता तब तक स्वनिम का भेद स्वीकार नहीं किया जाता। स्वनिम की विशेषताएं। पहला, स्वनिम उच्चरित भाषा की विशेषता है। लिखित भाषा में उसका कोई संबंध नहीं है। लिखित भाषा की अपनी इकाई है जिसे लेखिम कहते हैं। उदाहरणार्थ अंग्रेजी के दो शब्द में स्वनिम केवल दो है पर लेखिम में छह है। इस तरह अंग्रेजी का फ एक स्वनिम है पर उसे लिपि में व्यक्त करने के लिए कई लेखिम हैं, जैसे एफ डबल एफ पी एच पी डबल पी एच जी एच। इस तरह एक ही फ स्वनिम को अंग्रेजी में पांच प्रकार से लिख सकते हैं। इनमें भी लेखिम एक नहीं है। डबल एफ में दो लेखिम हैं और डबल पी एच में तीन। तो स्वनिम और लेखिम में भ्रम नहीं होना चाहिए। पहले का संबंध उच्चरित भाषा से है और दूसरे का लिखित भाषा से। दूसरा, प्रत्येक भाषा के अपने स्वनिम होते हैं जो दूसरी भाषा से सर्वथा स्वतंत्र और भिन्न हुआ करते हैं। सर्वसाधारण स्वनिम जैसी कोई वस्तु नहीं होती जो सभी भाषाओं में पाई जाए। ध्वनि का क या प अंग्रेजी के क प से भिन्न है। हिंदी का अ और बंगला का अ एक ही नहीं है। हिंदी में अग्नि कहते हैं पर बंगला में ओग्नि। हिंदी का अनिल बंगला में ओनिल उच्चारित होता है। स्पष्ट है कि स्वनिम की दृष्टि से हिंदी और बंगला के अ परस्पर भिन्न हैं। यही स्थिति सभी भाषाओं की है। यदि किन्हीं दो भाषाओं के स्वनिम में अभेद है तो उसे आकस्मिक समझना चाहिए। यही कारण है कि दूसरी भाषा बोलते समय अपनी भाषा के स्वनिमों से भिन्न होने के कारण उनके स्वनिमों के उच्चारण में कठिनाई होती है। अतः वक्ता दूसरी भाषा के स्वनिमों को भी अपनी भाषा के सांचे में ढाल लेता है। किसी पंजाबी बंगाली और मद्रासी को हिंदी या अंग्रेजी बोलते सुनकर आप सहज ही जान जाएंगे कि उसकी मातृभाषा क्या है। तीनों की हिंदी या अंग्रेजी के उच्चारण में पर्याप्त भेद आ जाता है। इसी तरह अंग्रेज जब हिंदी बोलता है तो उस पर अंग्रेजी का गहरा पुट रहता है। वह तुम न कहकर तुम कहता है, कारण कि अंग्रेजी में तो स्वनिम है ही नहीं। इसलिए उससे जो सन्निकृष्ट स्वनिम ट है वह उसी से में त को परिवर्तित कर लेता है। अपनी भाषा के अभ्यस्त स्वनिमों से भिन्न स्वनिमों का उच्चारण करते समय यह कठिनाई सबों को होती है। बहुत प्रयास और अभ्यास से ही दूसरी भाषा के स्वनिमों का परिशुद्ध उच्चारण संभव होता है। तीसरा, प्रत्येक ध्वनि की कुछ श्रावणिक विशेषताएं होती हैं जो एक उच्चारण से दूसरे उच्चारण में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और एक भाषा से दूसरी भाषा में पर्याप्त भिन्न हुआ करती है। एक ही व्यक्ति 10 बार क का उच्चारण करे तो दसों क एक दूसरे से भिन्न होंगे। इस कथन को स्वीकार करने में संभव है किसी को संदोह हो पर यह वैज्ञानिक तथ्य है। बात यह है कि मनुष्य के कोई दो प्रयत्न सर्वथा अभिन्न नहीं हो सकते। परिणाम स्वरूप आप 10 बार क लिखिए और देखिए क्या वे बिल्कुल एक से उतरे हैं। एक का से दूसरा का निश्चित ही भिन्न होगा, भले ही वह भिन्नता न्यूनतम क्यों न हो। यही स्थिति ध्वनियों के उच्चारण की भी है। जब एक व्यक्ति के उच्चारण में ही ध्वनि भेद हो जाता है तब अनेक व्यक्तियों के उच्चारण में ध्वनि भेद का कहना ही क्या। मेरे क के उच्चारण से आपके क का उच्चारण भिन्न होगा ही। तभी तो चेहरा नहीं देखने पर भी किसी की वाणी सुनकर हम उसे पहचान लेते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण बिल्कुल अपना उसका अपना है। अर्थात उसका स्वनिम समुदाय उसकी औच्चारणिक विशेषताओं से प्रभावित और नियंत्रित है। व्यक्ति भेद से स्वनिम भेद होने पर भाषा में जो यह स्वयं सिद्ध है, हिंदी के स्वनिम बंगला से भिन्न है तो अंग्रेजी के फ्रांसीसी से। चौथा, ध्वनि के प्रत्यक्षीकरण और उसकी सांकेतिक सार्थकता के निर्धारण में कुछ भेद तो महत्वहीन होते हैं और कुछ महत्वपूर्ण। महत्वहीन भेदों के होने या न होने से कुछ आता जाता नहीं, किंतु जो भेद महत्वपूर्ण होते हैं उनके कारण उस ध्वनि के पहचानने में तथा वर्ग निर्धारण में सहायता मिलती है, अर्थात हम यह कह पाते हैं कि कोई ध्वनि कौन सा स्वनिम है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक स्वनिम के भेदक लक्षण दूसरे स्वनिमों के लक्षणों से भिन्न होते हैं। तभी तो क से च का या त से प का भेद प्रतीत होता है। पांचवा, इस प्रकार स्वनिम की प्रत्याभिज्ञान अर्थात यह पहचानना कि कौन ध्वनि किस स्वनिम के अंतर्गत है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। किसी भाषा का बोलने वाला स्वनिम का प्रत्यभिज्ञान अनायास कर लेता है। किसी स्वनिम का प्रत्यभिज्ञान उसके लिए उतना ही सहज है जितना उसका उच्चारण। छठा, उपर्युक्त कथन के निष्कर्ष के रूप में यह तथ्य सामने आता है कि स्वनिम की धारणा उसके उच्चारण से अधिक उसके श्रवण पर निर्भर करती है। प्रयोगशाला या यंत्र यह नहीं बता सकता कि अमुक ध्वनि अमुक स्वनिम है, यह बताना स्रोत यानी कान का काम है। यंत्र किसी ध्वनि की विशेषताओं का विश्लेषण कर सकता है पर स्वनिम का निर्धारण नहीं। स्वनिम का निर्धारण केवल श्रोता कर सकता है, वक्ता भी नहीं कर सकता। बहुत बार वक्ता मन ही मन समझता है कि वह अमुक ध्वनि का उच्चारण कर रहा है, पर वस्तुतः करता है वह किसी अन्य ध्वनि का उच्चारण। स उच्चारण करने वालों को श का अभ्यास कराते समय वह भूलता है स, पर मान बैठता है कि श बोल रहा है, और संशोधन कराने वाले पर आश्चर्य करता है कि उसकी सही ध्वनि को भी वह गलत कैसे कह दे रहा है। बचपन में मेरा लड़का स को छ कहता था, इसलिए साफ का उच्चारण छाप करता था। एक दिन मैं कुछ कह रहा था जो उसकी समझ में नहीं आया तो उसने कहा छाप छाप कही। मैंने उसकी नकल करते हुए कहा लो छाप छाप कहता हूँ। उसने मुझसे रोक कर कहा छाप छाप नहीं छाप छाप कहिए। उसका अभिप्राय था कि छाप छाप नहीं साफ साफ कहिए, और इस प्रकार वह बार बार मुझे शुद्ध उच्चारण सिखाता रहा। उसके कान उसे बता रहे थे कि मेरा उच्चारण अशुद्ध है, अर्थात उसे स और छ स्वनिमों के अंतर का परिज्ञान था और अपने जानते वह स स्वनिम का ही उच्चारण कर रहा था। हमने स्वनिम को मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया या घटना कहा है क्योंकि उसका संबंध ध्वनि यानी स्वनिम के अंतर के प्रत्यभिज्ञान से है। अंतर के परिज्ञान की मात्रा और स्वनिम की धारणा के साथ उसका संबंध चार प्रकार से संभव है। क, यदि वक्ता के बोलने में श्रोता को किसी अंतर की प्रतीति नहीं होती तो इसका अर्थ है कि वक्ता उन्हीं स्वनिमों का प्रयोग कर रहा है जो श्रोता के हैं, अर्थात दोनों के स्वनिम अभिन्न हैं, जैसे वक्ता आशा बोले और श्रोता उसे आशा के रूप में ग्रहण करे। ख, यदि श्रोता को वक्ता के बोलने में अंतर की प्रतीति होती हो किंतु वह उसे सदोष या विकृत उच्चारण मात्र समझे तो वह उसे उसके अपने स्वनिम की सीमा में ही आएगा, जैसे बहुत सारे लोग श के बदले स का ही उच्चारण करते हैं। यदि वक्ता आशा बोलता है तो श्रोता उसे उच्चारण का दोष मानता है, फिर भी अर्थ समझने में उसे कठिनाई नहीं होती। ग, यदि श्रोता देखता है कि वक्ता ने बिल्कुल भिन्न ध्वनि का प्रयोग किया है तो अर्थबोध में कठिनाई न होने पर भी उसे भिन्न स्वनिम मानेंगे, जैसे बच्चा आशा को संभव है आच्छा कहे, सयाने आक्षा का अर्थ आशा लगा भी लेंगे, पर इससे दोनों एक स्वनिम नहीं जाने माने जा सकते। छ और श भिन्न स्वनिम ही रहेंगे। साफ और छाफ वाला जो उदाहरण ऊपर दिया गया है वह भी इसी कोटि में आता है। घ, यदि भिन्न ध्वनि के प्रयोग के कारण श्रोता गलत अर्थ समझ लेता है तो वह भिन्न स्वनिम है, जैसे कोई आशा को आपा या साफ को माफ कहे तो श्रोता अर्थ समझने में असमर्थ हो जाएगा। इसमें मानसा से कत पर निष्कर्ष निकलते हैं। क, स्वनिम की धारणा प्रत्येक व्यक्ति या वक्ता में रहती है, भले ही इससे उसका परिज्ञान अथवा पारिभाषिक शब्दावली में विश्लेषण करने की क्षमता न हो। बच्चा या निरक्षर भी दूसरे के द्वारा प्रयुक्त ध्वनि के अंतर को अनायास पहचान लेता है। ख, स्वनिम की सत्ता तुलनात्मक है, अर्थात स्वनिम का ज्ञान दो ध्वनियों के अंतर के ज्ञान पर निर्भर करता है, अतः स्वनिम कोई स्थिर तत्व नहीं बल्कि ध्वनिक अंतरों का उच्चावच बोध है। गो, भिन्न व्यक्तियों के स्वनिम समुदाय भिन्न हो सकते हैं। सातवां, स्वनिम का निर्धारण शब्द के आधार पर अधिक निर्दोष और परिशुद्ध होता है। शब्द समूह या वाक्य के आधार पर जटिलता बढ़ने की संभावना रखती है। अनेक शब्दों के मिलने पर कुछ नई ध्वनियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसा संधि में हुआ करता है। परिणामतः स्वनिमों की संख्या बढ़ सकती है और जो स्वनिम उस भाषा के मूलभूत अंग नहीं हैं, उनकी भी कल्पना कर ली जा सकती है। आठवां, निरापद तथ्य यह है कि एक ध्वनि दो स्वनिमों के संबंध नहीं हो सकती, अर्थात एक ध्वनि एक ही स्वनिम के अंतर्गत आ सकती है। स्वनिम की व्यवहारिक उपयोगिता। पहला, स्वनिम का ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक होता है। तात्पर्य कि किसी भाषा के स्वनिमों के ज्ञान से उसकी मूलभूत ध्वनियों पर अधिकार हो जाता है और तब बोलते समय वक्ता बड़ी आसानी से प्रत्येक स्थल पर उचित ध्वनि का प्रयोग कर पाता है। जैसे संगीत के साथ स्वरों के आरोह अवरोह प्रस्तार आदि का अभ्यास हो जाने पर गाने के प्रसंग में ठीक स्वर का प्रयोग सुगम हो जाता है, वैसे ही स्वनिमों का सम्यक ज्ञान भाषा के निर्दोष उच्चारण का साधक बन जाता है। इसीलिए भारतवर्ष में सबसे पहले ध्वनियों की शिक्षा दी जाती थी। अध्ययन का आरंभ ध्वनियों की शिक्षा से ही होता था। सफल भाषा शिक्षण के लिए चाहे मातृभाषा हो चाहे अन्य भाषा, स्वनिम का समुचित ज्ञान अनिवार्य है। दूसरा, भाषा विज्ञान की दूसरी शाखाएं जैसे पदविज्ञान, वाक्य विज्ञान या अर्थविज्ञान मूलतः स्वनिम पर ही आधारित है। पद अनेक स्वनिमों का समुच्चय है और वाक्य अनेक पदों का। समुच्चय तथा अर्थ का आधार पद या वाक्य है। इस प्रकार इन तीनों के मूल में स्वनिम की ही सत्ता दिखाई देती है। स्वभावतः जब एक स्वनिम का यथावत ज्ञान न हो तब तक पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान या अर्थ विज्ञान का सम्यक ज्ञान दुरधिगम है। तीसरा, स्वनिम का ज्ञान लेखन पद्धति या लिपि के निर्माण के लिए अपरिहार्य है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक दृष्टियों से आज भी संसार के अनेक अनधीत भाषाओं का अध्ययन हो रहा है। जिनकी कोई लिपि नहीं है उनकी लिपि का निर्धारण करने के लिए उनके स्वनिमों का विश्लेषण आवश्यक है। आदर्श लिपि का लक्षण है कि एक स्वनिम के लिए एक लिपि संकेत हो और एक लिपि संकेत से एक स्वनिम का बोध हो। यह तभी संभव है जब स्वनिमों को ध्यान में रखकर लिपि संकेत को गढ़ा जाए। देवनागरी में यही गुण है जो रोमन में नहीं है। स्वनिम सिद्धांत के आदि प्रवर्तक महर्षि पाणिनि हैं, जिन्होंने अपनी भाषा संस्कृत की ध्वनियों का सम्यक विश्लेषण कर उन्हें यथावत निरूपित, विन्यस्त और वर्गीकृत किया। स्वनिम सिद्धांत का ऐसा उत्तम वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक निरूपण अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। स्वनिम के अनुरूप लिपि संकेत का निर्माण भी एकमात्र भारत में ही संभव हो सका। दूसरे देशों में स्वनिम का ही ठीक से निर्धारण नहीं हुआ, तदनुरूप लिपि का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उदाहरणार्थ अल्प प्राण अघोष कंठ ध्वनि एक स्वनिम है और व्यक्त करने वाला लिपि संकेत है क। इस ध्वनि और लिपि संकेत में ऐसा संबंध है कि भ्रम का अवकाश ही नहीं है। इसके विपरीत इस ध्वनि के लिए रोमन में कम से कम 6 लिपि संकेत हैं, के, सी, क्यू, सी के, सी एच, सी सी। एक स्वनिम के लिए 6 लिपि संकेत। इसी तरह सी से कहीं क का बोध होता है तो कहीं स का, जैसे कैप या सिटीजन में। केमिस्ट्री में सी एच क का बोधक है तो शार्ट, चीफ, चेक, चोक आदि में चौका। इस तरह स्वनिम और लिपि संकेत में कोई वैज्ञानिक समन्वय नहीं है। अंग्रेजी के 5 स्वर संकेतों ए ई आई ओ यू से 21 स्वरों का काम लिया जाता है। बहुत लोगों को भ्रम है कि अंग्रेजी में केवल 5 स्वर हैं, वस्तुतः अंग्रेजी में 21 स्वर हैं। 5 लिपि संकेतों से 21 स्वनिमों का काम लेना कितना अवैज्ञानिक है यह कहने की आवश्यकता नहीं। तात्पर्य कि स्वनिम के ज्ञान के अभाव में वैज्ञानिक लिपि का निर्माण असंभव है।